ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜ ਹਨੇਰਾ ਰੂ ਤੇਰੇ ਜੇ ਚੰਨ ਗਈ ਸੈ ਚੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜ ਹਨੇਰਾਈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਨ ਸਾਡਾ ਚੜਦਾ ਉੱਥੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਚੰਨ ਸਾਡਾ ਚੜਦਾ ਉੱਥੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਾਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਬਾਹੂ ਯਾਰ ਮਲੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਬਾਹੂ ਯਾਰ ਮਲੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਪੀਰਾਂ ਦਿਆ ਪੀਰਾ ਮੈਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਪੀਰਾਂ ਦਿਆ ਪੀਰਾ ਮੈਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਈਆਂ ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਈਆਂ ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਂਦੇ ਬਾਹੂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੈਂਦੋ ਕਿਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਿਆਦ ਪੀਰਾਂ ਦਿਆ ਪੀਰਾ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਕੰਨ ਧਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਅੜਿਆ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਚਾ ਜਲਾਨੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਹਾਨੀ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲਿਓ ਛੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਰਾ ਬਾਹੂ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਰ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਇਆਂ ਅੱਗੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਣ ਬੁਝਾਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਚੁਕਾਵੇ ਨਾ ਖੁਦ ਸੋਵੇ ਨਾ ਸੋਣ ਦੇਵੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਜਗਾਵੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਿਨਾ ਦੇ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਇਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਿਆ ਜਾਤਾ ਬੈਠਾ ਮਾਰ ਪਥੱਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੰਨ ਚਲਾਇਸ ਕੀ ਤੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਅਵੱਲਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਾਤੀ ਪਾਈ मैं दिखा यार अकल्लाऊ बाजों मिलिया मुर्शद का मलबाऊ हो भी नहीं तसल्लाऊ।
आरू सोहले महिला पांचवा एक ओंकार कर सकते हैं। आद निरंजन प्रभ निरंकारा अब में वरते आप निरारा।
संत महात्मा जब कभी भी आए हैं वो हमेशा ही एक मालिक के पुजारी रहे। उसका जो कुछ उन्होंने तजुर्बा किया उसका बयान दुनिया के सामने रखते रहे। इसमें शक नहीं कहीं कहीं उन्होंने ये बयान किया कि हम उसी जात के कतरे हैं। आई एम माई फादर आर वन पिता पूत एक रंगली ने मगर उसकी हस्ती से इनकार नहीं उसी के इजहार के लिए उनका सारा जीवन बसर हो। ये श्री गुरु अर्जुन साहब की वाणी है जो आपके सामने आ रही है। इसमें फरमाते हैं कि वो प्रभु वो परमात्मा आदि है आदि आज किसको कहते हैं जब अभी ये सृष्टि बनी नहीं थी उससे पहले उस वक्त कि तू हमेशा है अटल है लापानी। परमात्मा का बयान जब से दुनिया आई उसका लोग बयान करते रहे बयान कर करके हार गए मरबो मजबूत ताजा का ताजा रहा। ये मजमून कहो परमात्मा के बारे में एक ला इंतहा मजमून है जिसकी कोई अंत न हुआ न हो सकी। जितने महात्मा भी हैं उन्होंने इसके मुतल्लिक बतेरा कुछ कहा। सदियों फिलासफी की चूं चिरा रही मगर खुदा की बात जहां थी वहीं रही एज फ्रेश एज एवर। गुरु नानक साहब जी ने जपजी साहब में बड़ी खूबसूरती से निर्णय किया एक पूरी पौड़ी इस पर दी। उसमें उन लोगों का जिक्र है कि उन्होंने उस प्रभु के मुतलक क्या कुछ कहा है किस तरह से उसके गुणवाद जा रहे हैं। उसने कई कहो दर्जे बनाए। वो जपजी साहब की पौड़ी आप गौर से सुनी। गावे को तान होवे किसे तान कोई तो उसके तान और जोर को बयान कर रहा है और वो भी वो जितनी किसी की ताकत हो उसकी सारी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये है कि वो समर्थ है वो पूर्ण है वो सबका मेल फैक्टर का रूलिंग पावर है सबके सिरा जबरदस्त ताकत है जिसके कंट्रोल में सब कुछ चल रहा। बहुत सारे महात्मा तो इसी का ध्यान करते हैं। गावे को तान होवे किसी तान जितना किसी को तान बल भी बख्शी है मालिक ने उतना उतना उसकी ताकत के मुतालिक ध्यान करते रहे। गावे को तान होवे किसी तान गावे को दात जाने निशान उसकी दाते देख देख कर भाई इसका वो दात अर्थ इसके लिए भाई शुक्राना करो इसके लिए भी करो इसके लिए भी करो। कई महात्मा आकर इसी उगाने करके बयान करते रहे। गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइयां चार गावे को विद्या विश्वचार। उसके गुणावाद वो ऐसा है वो मुनसिफ है वो रहीम है वो दयाल है ऐसे उसके अनेकों गुणों का बयान करते हैं। और वो बयान और उसके आचार को कॉन्डक्ट उसका व्यवहार क्या सब बर्ताव दुनिया से उसका है क्या ताल्लुक है उसके बारे में जिसके मतलब वेद शास्त्र ध्यान करते रहे उसी का जिक्र करते रहे। پھر کئیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی یہ ایک ایسی پرماتما کا مضمون اتنا کٹھن ہے یہ بیان میں نہیں آتا. جاوے کو ودیا وکھ وچار, کہ یہ وچار میں آنے والی مضمون نہیں, یہ اس سے پرے. پھر کیا کہتے ہیں, گاوے کو تان ہوئے کسے تان, گاوے کو داد جانے نشان, گاوے کو گن وڈیائی چار, گاوے کو ودیا وکھن چار. راگی کہتے ہیں گاوے کو ویچے حاضرہ ہدو, کہ ہزار ضرور ہر جگہ پری پن کوئی مہاتما اسی طرح گا رہے, کوئی ایسے گا رہے جو آسمانوں پر بیٹھا دور سے دور سے نظر آ رہا. پھر آخر کہتے ہیں سارے بیان کرنے والے کتنے ہی آئے دنیا میں, اس کے مختلف پہلوؤں کو اس سے بیان کرتے رہے, مگر کتھنا کتھی نہ آوے توٹ, کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ. کتھنا تو کرتے رہے, کتھتے رہے, اس کو اس کا کوئی انت نہ آیا, اور کٹ کٹ کر کے کروڑوں ہی جیو آئے اور بیان کرتے رہے, مضمون مضمون تازے کا تازہ رہا, کبھی ختم نہیں. آخر پھر کیا کہتے ہیں, ایتے کیتے کہتے کیا کہ اٹھ جائیں, کہتے آج کتنی گنا بات گا گا کر دنیا کے لوگ آئے اور چلے گئے. پھر کہتے اتنے سارے جتنے آج دن تک آئے, ایتے کیتے ہور کرے تا بھی آنکھ نہ سکے گئی, کہ جتنے آئے ہیں کہ اتنے اور بھی آ جائے کروڑوں ہی, اس کا بیان کرتے رہے, وہ بیان میں آنے والی چیز. یہ گرو نانک صاحب نے اس کے متعلق فرمایا, وہ مضمون ہمیشہ تازے کا تازہ رہا, کوئی مہاتما آیا اس کو گا گا کر چلا گیا, دوسرا پھر نئے سر سے گانے لگا, نئی بٹھی سے وہی راگ گانے لگا, وہ مضمون ختم ہونے میں نہیں آیا. اس میں حافظ صاحب سے پوچھا گیا, ہر ایک مہاتما نے اس کے متعلق رائے دی, یہ عقل سے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا, پرماتما ہے کہ نہیں, کیا بدھی اس کو جان سکتی, کیا وہ بدھی کے دائرے میں آ سکتا. حافظ صاحب نے فرمایا, ادیس از مطربو میں گو اور رازے دائر کم تر جو, کہہ لے کہ بھائی کیا کرو, یا تو ساکی کا بیان کرو, گرو کا جس نے پربھو کو پایا اس کو تو تھوڑا بہت تو بیان کرو گے نا, دیکھا ہے نا, یا جو وہ نام کی شراب پلاتا ہے یا اس کا ذکر کرو. ارے بھائی یہ دنیا کیسے بنی, کب بنی, کس نے بنائی, کہاں پر بنائی, اس کی اس میں مت جاؤ. کہتے کیوں نہ جاؤ, کہ کس نک شود نک شاید با حکمتی میں مرا, کہ کسی نے بدھی کے دائرے کے اندر اس میں کو حل نہیں کیا نہ کر سکتا, تو بدھی کا مضمون نہیں. اندریاں دمن ہو, من کھڑا ہو اور بدھی بھی استھر ہو, تب اس کو پائیں گے نا جانے گا. تو حافظ صاحب نے تو یہ کہا. اب اس ذات کے اس حقیقت کے جو لا بیان ہے, جس کو کئی طریقوں سے مہاتما بیان کرتے رہے, جس کا بھی نرنے کیا گیا گرو نانک صاحب کے بانی کے دوارا, کہ تو وہ آخر اس کے متعلق جب تک ہم اسی ذات کے کہتے ہیں, جب تک ہماری آتما اس میں جا کر ریپوز نہیں کرتی, اس میں لے نہیں ہوتی ہے, تب تک شانتی کا ہو. سینٹ آگسٹن کہتا ہے, داؤ او گاڈ ہیتھ میڈ اس انٹو دائی سیلف اینڈ دی ہارٹ آف مین از ایور ریسٹ لیس انٹل اٹ ریسٹ ان دی, کہ ہے مالک تو نے ہم کو بنایا ہے, ہمارا دل تب تک ترپتی نہیں ہو سکتا, ترپت نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم تم میں واصل نہ ہو جائیں. جو آتما پرماتما مل گئی وہ ترپت ہو گئی, اس کے سب میں حل ہو گئے. وہ کون سی چیز ہے جس کے جاننے سے سب کچھ جانا ہوا ہو جاتا, اس کو جان گئے. جس کے جاننے کے لیے سب مہاتما آج دن تک بیان کرتے رہے, وہ سب کو وہ جان گئے. تو اسی مضمون کو آپ دیکھیے, اس پرماتما کو کتنے لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں, یاد تو ہر کوئی کرتا ہے نا, کسی نہ کسی شکل میں. تو یہ بیان کیا گیا کہ چار قسم کے لوگ اس پرماتما کو یاد کرتے ہیں. پہلے وہ لوگ ہیں جو بھوگوں کے خواہش مند ہیں, مہاراج ہمیں مکان رہنے کو دو, ہمیں کھانا روٹی کھانے کو دو, ہمیں یہ دو, ہمیں وہ دو. تو بھوگوں کے خواہش مند ہے پہلا درجہ جو اس کو یاد کرتے ہیں, اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو پرمارتھی ہیں, جن کو پرمارتھ کی خواہش ہے. तीसरे वो लोग हैं जो ज्ञानी वो हकीकत को पा गए और उनको समझ आने लगे ही। तो पहला चौथे दर्जे के वो लोग हैं जो दुखी होते हैं उनको बाहर करते हैं। चार किस्म के लोग हो गए ना, एक दुखी, दूसरे भोगों के ख्वाहिशमंद, तीसरे परमार्थी और चौथे ज्ञानी लोग। तो चार किस्म के लोग हैं जो उस मालिक को याद करते हैं। अब इसका ये मजमून, ये दुनिया कैसे बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई, ये सवाल कभी हल नहीं हुआ। अंडा पहले था कि मुर्गी, सवाल ये है ना। बीज पहले था कि दरख्त, ये माया के अंतर का सवाल है। न हल हुआ न हल हो सकता। जब तक माया और बुद्धि से आप परे नहीं जाओगे ये सवाल समझ नहीं आएगा। तो इसका आला जवाब क्या, हमारे हजूर थे उनसे ये सवाल किया गया तो क्या लगे भाई, ऐसा करो जिसने ये दुनिया बनाई है चलो उसके पास, समझे, उसी से पूछे। अब उसके पास कौन पहुंच सकता है जिसकी मन बुद्धि इंद्रिय सब स्थिर हो जाए, वहां ये सवाल ही नहीं रहेंगे कि है के लिए कहाँ है कहाँ नहीं। तो जब तक बुद्धि स्थिर न हो तब तक हम उसको नहीं पा सकते। परमात्मा के मुतालिक बयान किया है कि वो देश काल मकान और जबान का हो, इससे परे इनके बंधनों से आजाद, कारज और कारण से इलत मालूम के सिलसिले से भी परे। सोचने वाली काज और अफेक्ट का भी बैकग्राउंड, काज बना अफेक्ट हुआ, अफेक्ट हुआ काज हुआ, काज के पसे पुष्ट अफेक्ट के पसे पुष्ट जो आदि चीज है वो क्या, ये एक ऐसा चक्र है जिसमें निकलना मुश्किल है। तो साहब महात्मा ने इसी के लिए, तो हाफिज साहब ने इसलिए कहा ऐ भाई तू क्या कर, ऐ दिल वे जहां गुजर पुर, ऐ दिल तू इस जान से ऊपर आ जा, ताकि उसका क्या हो, ता जाने जान बबीनी, ताकि तेरी जान की जो जान आ रहा है ना उसको तू देखने वाला काम हो। जब तक तू अपनी आपको एक अलहदा हस्ती मानता है ना, इससे ऊपर नहीं आता, अपने आप को नाबूद नहीं करता, तू तू करता तू बिहा मुझ में रही न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तुझे। जब तक तुम मैं ना अपने आप को नहीं भूलोगे, भूलोगे मैं भी नहीं करोगे उसको नहीं जान सकोगे। तो इसलिए कहा कि आए भाई तू इस जान से गुजर क्या, ताकि तू जो जान की जान है उसके देखने के काबिल हो जाए। बिगजार ही जहां आता आ जहां भी इस बाहरी दुनिया से ऊपर आए, ताकि उस दुनिया को तू देखने के काबिल हो जाए। तो सब महात्माओं ने इसको यत्न किया है खोल खोल पर बयान करने का। गुरु अर्जुन साहब ने सुखमनी साहब ने फरमाया है आप सत्य किया सब सत्य, वो मालिक सत्य था, अटल लाभानी था, जो कुछ पैदा किया वो भी अटल चीज पैदा की। आप सत्य किया सब सत्य, आपे जाने अपनी गत, वो क्या है क्या नहीं ये वो खुद जानता। अब करते की नित न जाने किया, करते की नित न जाने किया, जो बनाने वाला जो बनाई हुई चीज है वो उस करते क्या गति को कैसे जान सकता। बर्तन बन गया कुम्हार की अस्थि की तो क्या जान सकती, करते की नित न जाने किया, नानक जो तिस भावे सो वही। अगर उसको भा जाए वही कुछ हो रहा है जो उसकी रजा में है, हम उसके बनाए हुए बनाए हुए बनाने वाले को जानने के नाते। इसलिए अगर कुछ परमात्मा के मुतालिक हमें पता चल सकता है तो वो उन लोगों से पता लग सकता है जिन्होंने उसको अनुभव किया। बुद्धि का मजमून नहीं, अगर हम उसके मुतालिक कुछ जानना चाहते हैं तो अवश्य ऐसे पुरुषों की सोबत में जाना होगा जिन्होंने उसका अनुभव किया, उसका नतीजा क्या होगा। वाणी क्या कहती है, सुन संतन की साची साखी, तो बोले जो पेखे आख, जो संतों की शहादत को सुनो वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो देखा है उन्होंने वो दिखा सकते हैं। नानक का पाठ क्या दिशे जाए, जो आत्म तत्वदर्शी है, बिहोल्ड द लॉर्ड, ये क्राइस्ट क्या देखो, सामने वो देख रहे हैं, वो उनकी वो आंख बन गई है जिसे वो नजर आता है, जो मन बुद्धि के दायरे में है, अंतर की आंख खुली नहीं बनी नहीं, वो कैसे नजर आए? जिन्होंने देखा वो कहते हैं ये संसार जो तू देखदा ये हर का रूप है, हर रूप नजर आया भाई, ये सारा उसी तो जरूर है। जब वो आंख बन जाए तो ये इसी में हर जगह परिपूर्ण नजर आता है। तो परमात्मा है कहां? हर जगह परमात्मा जल में मीन प्यासी ही ये देख मोया रहा है, मछली की जान जीवन आधार पानी है, वो पानी में रहती है, पूछती है पानी कहां? तू दरियाओ मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, कि तू सारे जगह परिपूर्ण है, मैं मछली होकर तुझमें तैर रही। किन लोगों का ये ध्यान है जिनका अंतर का अनुभव खुला, समझे? जिनका नहीं खुला वो इससे दूर बैठे। आसफ जी की वार में आप देखेंगे वहां इस बात का निर्णय किया है, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, इस जगत सच की होती है, सच ही भी समझता है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो ना हो। जिस तरह रूप आत्मा जिस्म में एक जाय भी है और हर जाय भी है, आपने मते आदमी देखे नहीं, आंखें फिरती यहां बस रहा, यहां से सारे जिस्म को सत्या मिल रही है। तो रूह का ठिकाना यहां है मगर लू लू में रच रही, ऐसे परमात्मा भी एक जाय भी है और हर जाय भी है, ये सारा संसार ही उसका जिस्म। सब आत्माओं ने इसमें भी बयान किया, तो आज तो टीका बयान का है, समझाने बुझाने का है कि अरे भाई वो हर ही जगह हाजिर है ना, वो कभी कहीं और है ना, आसमानों पर है ना, पहाड़ों पर है ना, दरियाओं के तटों पर है, वो तो भाई हर ही जगह। सिर्फ आंख को से बिनाई चाहिए, आंख देखने वाली चाहिए। अगर आप आंख में कुप्त बिनाई नहीं है तो सूरज हजार चढ़ जाए आपके लिए नहीं चढ़े। फिर कहते हैं अगर वो है हस्ती है जैसे ध्यान जीता जाता है तो वो कैसे, किस ठिकाने पर उसका हमें एहसास होने लगता है? कहते जब हम मन बुद्धि से परे चलेगा, मन बुद्धि से परे चले जाएंगे तब उसका एहसास होने लगेगा। इस अनंत कहो सृष्टि के पीछे एक लाभयान ताकत है जिसको सब महात्माओं ने बयान किया है और उसी के आधार पर ये सब सिलसिला कायनात का चल रहा है। किसी से उसको इनकार नहीं हो सकता, किसी को भी। अब क्या बुद्धि विचार से हम उसको जान सकते? अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट साइंसदान लोग जो है हमारे पास बड़ा हथियार साइंस का ही है, जो चीज आज साइंस साबित कर दे कहते हैं हाँ ठीक है। अब उन्हें यह देखना है क्या साइंस ने उसकी जात का कुछ पता दिया या दिला सकी। हर्बर्ट स्पेंसर अच्छे मानी हुई हस्ती हैं, वो क्या कहते हैं, केवल बुद्धि विचार से हकीकत तक रसाई करना जो चाहता वो चाहता था कि बुद्धि से उसको किसी तरह हम समझ सकें, मगर ला हकीकत वो हकीकत ना किसी को मालूम है ना हो सकती है। ये आखिर क्या है? आखिर क्या है कि वो हकीकत है तो सही, ना किसी को मालूम है ना हो सकती है। भाई किसी को तो मालूम है, अनवरी पुरुषों को, साइंसदानों को नहीं, जो मन बुद्धि के घाट पर बैठे हैं उनको नहीं, जो इंद्रों से मन और बुद्धि से परे जाने वाले हैं उनके लिए, वो तो जाने जा पर भी नहीं। इसको ताकीद की है, विवाद बचस्मे सरमाची दीनम, चाहिए कि हम अपनी आंखों से उस मालक को देखें। कलाम श्राप भगवती पुष्टि, वो कान खोले जिससे उसके कलाम पर सुन सके, है तो सही। मन हर्बर्ट स्पेंसर यहां पर सिर नीचा करता, वो यही कहता भाई मन बुद्धि से तो जाना नहीं जाता, ना किसी को भाई हकीकत का पता है तो न मालूम हो सके, जगह ही छोड़ दिया। तो ये साइंसदानों का हाल है जिसको हम सब कुछ मान रहे हैं, समझा? आखिर उसे उस हकीकत को जानना पड़ा, मानना पड़ा, और आपने एक मावारी अखबार जो उन दिनों निकला करता था उसमें लिखा कि इस दुनिया में एक अनंत और अविनाशी शक्ति समा रहे हैं, एक अनंत लिमिटलेस और अविनाशी ना नाश होने वाली जिससे हर एक चीज प्रगट हुई। कोई चीज है भाई अविनाशी है, पता नहीं क्या, उसको किसी ने जाना नहीं ना जाना जा सकता बुद्धि से, मगर कोई है सही। आखिरी जो जिंदगी का तजुर्बा जब उसको आखिरी हुआ उसने लिखा कि भाई एक हकीकत जरूर है जो ला बयान है, न बयान होने वाली चीज है मगर है जरूर। ऐसे ही उसके बाद और महात्मा भी आए, महात्मा साइंस के महात्मा कहो परमानंद के महात्मा नहीं, जर्मन फिलासफर कैंट था, मशहूर आदमी है, वो क्या लिखता है, उसने तलाश की बतेरी की हकीकत का कुछ पता मिल जाए मगर आतिर होकर ना जानी जा सकने वाली हकीकत पर विचार करने ही छोड़ दी। तो भाई वो तो जानी जा नहीं थी, उसको क्यों विचार कर, जो जानी जा ही नहीं सकी, बुद्धि के दायरे में आ नहीं सकी, उसके मुताबिक क्यों सिर खुपाई की। जो हाफिज साहब ने कहा ना, अदीसे मुत्र वो मै गो राजे दैर कब तुर जो, किसका सिंधक शूद न कुछ आयन बहिक मुखी, तो उसका ये बयान है। फिर जॉन स्टुअर्ट आए, उन्होंने थ्री एसिड ऑफ रिलीजन लिखी है किताब, उसने इसी का जिक्र किया। वो क्या कहते हैं कि आदि कारण फर्स्ट काज के बारे में जो तजुर्बा बतलाते हैं, और कारण शब्द के माने जो हमने समझे हैं वो ये है कि सब कारणों में जो आदि और व्यापक तत्व मौजूद है उसके बगैर और कुछ नहीं होता। एक ताकत है जो सब में समा रही है, वो आदि है, वो क्या है ये पता नहीं। तो साइंसदानों ने भी यहां से नीचा किया, भाई है सही कुछ है जरूर मगर क्या ये पता। वृद्धार्मिक अब निश्चित हमारा क्या कहता है, उन्होंने भी इसी बात को खोलकर समझाया कि हकीकत ना ही नाम रूप के ज्ञान की तरह इल्म के पकड़ में आ सकती, निराव चीजों का जिसका ज्ञान है समझ सकते हैं ना, कहते वो हकीकत ना समझ में आ सकती है और ना ही वर्णन की जा सकती है। जैसे रेत से तेल का निकलना, चिराग से प्यास का बुझना नामुमकिन है, इसी तरह ब्रह्म को इल्म के दायरे में या पकड़ में लाना नामुमकिन है। आखिर क्या कहा, नई थी ये नहीं ये नहीं कुछ आ, है कुछ मालूम नहीं क्या, क्योंकि बुद्धि में आने वाली चीज नहीं ना, बात तो ये है। तो सब ने अपनी अपनी जगह यही बयान किया, ये आद शक्ति एक है जो अनंत और अविनाशी है। फिर जॉन स्टुअर्ट ने, ये भी साइंटिस्ट हुआ, मिल जॉन स्टुअर्ट मिल, वो कहते हैं ये शक्ति असल में एक और एक रसा है, हमेशा रहने वाली है, कभी बदली नहीं हो, और ब्रह्मांड में खास मिकदार में मौजूद है, कभी जो कभी घटती नहीं और बढ़ती नहीं, एक रस पूर्ण है, पूर्ण से निकालो पूर्ण फिर भी पूर्ण, पूर्ण में कुछ और डाल दो तो भी पूर्ण, वो घटती बढ़ती नहीं। अब सवाल यह आता है कि ये जो चेतनता है हमारे हर एक इंसान में, हम ये मानते हैं कि परमात्मा ऑल कॉन्शियसनेस चेतनता का समुद्र है, हमारी आत्मा उसकी जात की एक कतरा, ये भी कॉन्शियस एंटिटी है, चेतन स्वरूप है, ये आई कहां से चेतनता। तो इसके मुतालिक ध्यान करते हुए आप देखिए, साइंसदानों ने बड़े तजुर्बे किए, एक बत्तख का अंडा एक मुर्गी का अंडा दोनों सहे गए, एक से और किस्म का बच्चा पैदा होता दूसरे से होता, वो कौन सी उसमें शक्ति काम करे जो इसमें तरीज कर जाती, उसके मुतालिक साइंस वालों ने ही मालूम करते। ये तो कह सकते हैं गर्मी देकर बच्चा तो पैदा कर सकते, मगर ये तमीज इख्तलाफ कैसे एक अंडे में से दूसरी शक्ल पैदा है दूसरे से तीसरी पैदा हो जाती और रंगी, इस बात को साइंसदान नहीं जानते। मैं ये अर्ज कर रहा हूं इसलिए कि हम ये समझे जो साइंसदान बेचारे वो कोशिश में है, इस तलाश में है कि उस शक्ति को जान सके, जो उनके लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं। लमार्क एक है बड़े अविनीश ने, جو ارتقاء کا مضمون ہے نا اس کے جاننے والے تو بڑے ماہر تھے, انہوں نے ساری عمر اپنی اسی میں گزاری. وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں نیچر جو ہے نا قدرت, وہ ایک نیچر از بٹ این آرڈر آف تھنگ, ایک باقاعدگی میں, ایسے نہیں اندھا دھند کوئی نہیں جا رہا, وقت پر سولی چڑھتا ہے, وقت پر گزرتا ہے, ہر سال باقاعدہ ٹائم نوٹ پر این اسی وقت اسے پیر چلتا, موسم وقت پر آتے ہیں, ہر ایک چیز باقاعدگی سے چل رہی ہے. آپ پتہ بھی نہیں ان آرڈر کوئی چیز ہے اس کو جو کنٹرول کر رہے ہیں. سبجیکٹ ٹو لاز اوریجنیٹنگ فرام دی ول آف دی سپریم بینگ, وہ ایسے قانونوں کے مطابق چل رہی ہے جو کسی ایسی طاقت مہان شکتی کے جس کے متعلق ہم ابھی کچھ وہ ہے صحیح, وہ لا انتہا ہے, ہمیشہ ہی آف ہو ریزسٹینس اینڈ باؤنڈلیس پاور. مین ہیز سم آبزرویشن کنسیوڈ اینڈ انڈائریکٹ داؤٹ ساؤنڈ آئیڈیا, ہے کوئی طاقت ہم براہ راست اس کو نہیں جان سکے, مگر ہم ایز اے میٹر آف انفرنس نتیجہ اخذ کرتے ہیں کوئی ایسی طاقت. ارے بھائی صحیح چلتی رہتی ہے, آخر کوئی بنانے والا ہے نہیں اس کا, یہ سارا سلسلہ باقاعدگی میں جا رہا ہے, اس کا کوئی میکر ہو سکتا ہے نہیں. باقاعدگی طاقت آتی ہے, آج اور چلے کل سورج یہاں سے نکلا ہے, پتھر یہاں سے نکلا ہے. لارڈ مارک نے اس کے متعلق فرمایا. اب ڈارون صاحب کی تھیوری بڑی مشہور ہے, لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ پرماتما سے منکر تھا, مگر نہیں یہ بات صحیح نہیں. اس نے بیان دیا ہے وہ اپنے ایک کتاب لکھا آریجن آف اسپیسیز, یہ اس لیے میں کوٹیشن دے رہا ہوں آپ کو, اگر آپ چاہیں تو وہاں پر مطالعہ کر سکتے ہیں. آریجن آف اسپیسیز اس کتاب میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں آئی انفر, میں نتیجہ نکالتا ہوں کہ دیٹ آل آرگینک بیئنگز ہیو ڈیسینڈیڈ فرام ون پرائم آڈیو فارم ان ٹو وچ لائف واز فرسٹ بریزڈ بائی دی کریئٹر, کہ جو کچھ یہ بن رہا ہے کسی ایسی ہستی سے جو سب سے آدھی تھی, اس کے سبب سے یہ جو بنی ہے اس کے کارن سے بن رہی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ناستک تھا, وہ ناستک نہیں تھا بس وہ آستک تھا, مگر اس کو نہ جاننے کے سبب سے صاف کیا. بھائی ہمیں اس کے متعلق پتہ نہیں, معاف کرنا جتنے آپ بیٹھے ہو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں پرماتما, سوچنے کی بات. لیکچرار بھی ہوں گے, کتھا کرنے والے بھی ہوں گے, گرنتھ و پوتھیوں کے مار کوٹیشن بربھار سے بھی دینے والے بھی ہوں گے, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. سائنسدان جو کچھ دیکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے, بھائی ہمارے قبضے میں اتنی آئی ہے چیز, اس سے زیادہ نہ ہو سکتی ہے نہ کچھ. اس نے ڈارون نے تین چٹھیاں لکھی آخری دن, گرنتھوں پوتھیوں میں اسی جسم کی نہ منگائی گئی ہے, اسی کے اندر داخل ہونے کے راز کو بتلایا ایٹ پریزنٹ, کہ یہ فضول بات ہے بھیا, ابھی سوچ وچار میں کرنے سے اب دی آرجن آف لائف, یہ چیتن تک کیسے بنی, کہاں سے آئی, کہ یہ وچار کرنے کے قابل تو ضرور نہیں. ون مائٹ ایز ویل تھنک آف دی آرجن آف میٹر, کہتے اس چیتنتا کے پیچھے نہ جاؤ, یہ جاؤ یہ جو مادہ کیسے بنا ہے اس کو سوچو پہلے, اس کے متعلق تو پتہ نہیں کہاں سے آئی کیسے بنی. آیا ہم بنا سکتے, آپ دیکھیں ایک مثال دے کر بیان کرو, دو آدھی روٹیاں ملا دو ایک روٹی بن جائے گی, ہزاروں ہی پہلی جماعت جس کی بدھی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ملا دو پوری عقل والا نہیں بنے گا. چلے گی ابھی تک فورس کو تو وہ پیدا کر سکے, کمبینیشن جیسے زنک آکسائڈ بنتا ہے نا, یا یہ کہو کاپر فائلنگ پیتل کے جو ٹکڑے ہیں اس کو اگر اس پر سلفیورک ایسڈ گند کا تیزاب ڈالا جب وہ ببل کرتا پیدا تو ہوگی تھی, مگر اس میں چیتنتا نہیں, چیتنتا تو کوئی سائنسدان ابھی تک نہیں بنا سکا. کانشیس ہے چیتنتا محسوس کرتے ہیں, دیکھ رہے ہیں یہ چیز نہیں پیدا کرتے, باقی وہ تیرا پیدا کرتے ہیں. تو بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک فضول سی بات ہے, اس بات کے بارے وچار کرنا بھی کیوں وقت ضائع کرنا, وہ تو آئی نہیں سکتی لائف کہنے کے اس کے متعلق نہیں, یہ دیکھو کہ یہ مادہ کیسے بنا, جسے یہ سارا جگت بنا, یہ جسم بنا, اس کے متعلق وچار کرو.
तेरे एक और दोस्त को चिट्ठी लिखी उसके बाद, वो करोल साहब है, वो क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ सीम्स टू मी टू बी बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ टाइम, कि ये चेतनता या जिंदगी कैसे बनी, ये एक ऐसा मजमून है जो साइंस के हद से परे है। साफ कह दी, साइंस उसको साबित नहीं करती, साइंस बाहरी दृष्टमान चीजों के कैसे बनी कैसे नहीं बनी इसको तो बयान करती है, इसकी साजिश सबब बना भी सकती है, मगर इससे परे जो चेतनता इन चीजों को आधार दे रही है उसके मतलब कुछ नहीं जानती। देखिए ये मजमून ही पड़े उसके आखिरी है, आखिर एक और तिथि आखिरी दिन जो लेती है, तीन चार दिन पहले कहते हैं मौत से, वो अजीब है, वो कहते हैं नो एविडेंस विद एनीथिंग हैज एज गेट इन माई ओपिनियन हैव एडवांस इन फेवर ऑफ ए लिविंग बींग बींग डिवेल्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर। कहते कोई चीज ऐसी आप तक मेरे दिमाग में नहीं आ सकी जिससे जो मादा जड़ चीज से चेतन चीज पैदा हो सके। तो सारे महात्मा जो साइंस के हैं वो भी यही बयान करते रहे, हक्सले हुए हैं, वो क्या लेते हैं, उन्होंने बायोलॉजी पर मजमून लिखा है जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है ना, उसमें इसका जिक्र दिया, वो कहते हैं आपकी कॉजेज that have led the originating of living matter, it may be said, जितने सबब हैं जो लाइफ के जिंदगी के पैदा करने वाले हैं उनके मुतालिक ये कहा जा सकता है क्या, he said that we know nothing, कि हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं, ये कैसे जिंदगी इसमें आ जाती, बच्चा पेट में आया उसने जिंदगी पैदा हुई, ये कैसे आ गया, इसको हम साबित नहीं कर सके, अभी तक नहीं कर सके। तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे और महात्मा, मगर वो जो जाते हक हैं, मेरे कहने का मतलब है जिसको साइंस वाले बुद्धि के दायरे में अपनी सारी तफ्तीशों के साथ जो आज तक उन्होंने की है, एटम बम बनाए हैं, हाइड्रोजन बनाए हैं, आसमानों पर उड़ना बनाया है, वो भी कासर है कि ये चेतनता कैसे पैदा होती, ये नहीं बनाते। यहां तक कह दिया कि केमिस्ट्री में कोई ऐसी चीज नहीं, द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ is not within the present range of practical chemistry. चेतनता का पैदा करना कहते हैं ये केमिस्ट्री के हद से परे है, मात्र ये कर दिया। अब वही है जिसके हम सब पुजारी हैं, अगर उनका हमको पता करना हो तो कहां से करेंगे, जाओ किसी अनुभवी पुरुष के पास जिसने उसका अनुभव किया, वही सबका माबूद है, सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, समझे, मजब मिलत तो जुदा है मगर काम सबका है, हर एक उसी के पुजारी है कि नहीं, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई उसको गाड कहता है, कोई उसको राम कहता है, कोई उसको तो रहीम कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई वागुरु कहता है, अनेकों नाम उसके है, तो सबका आदर्श वही, अरे भाई उसी के पुजारी बनना है, उसी को पाना है। अब देखने वाली चीज यह है ये उसके पाने के लिए इस जात के मुताबिक सब महात्माओं ने बयान किया, वेदों शास्त्रों में लोग वो भी यही कह रहे, यजुर्वेद कहता है उस खालिक ने सारे जहान को पैदा किया, यही श्रुत्या सूत्र जो उपनिषद है उसमें अकेला ही इस सृष्टि का पैदा और पना करने वाला वही परमात्मा, किसी का मोहताज नहीं, खुद बनाने वाला। ऋग्वेद में भी उस परमात्मा की तारीफ करो जिसने सारी दुनिया बनाई, इन सब महात्मा इसी बात को खोल खोल कर ध्यान करते हैं। भगवत गीता क्या कहती है, आप 11 अध्याय पढ़िए, उसमें लगाते हैं वो ही सारे जगत का पिता सबके ऋषियों वाला, फिर कहा 10वें अध्याय में ऐ अर्जुन जो सब अस्तियों की पैदाइश का मूल है वो मैं ही हूं, समझे, जो जंगम या स्थावर है वो मुझ बिना नहीं, मेरे आधार पर सब दुनिया चल रही है। तो मेरे अर्ज करने का सिर्फ यही मतलब है कि सब महात्मा उस परमात्मा के पुजारी रहे, एक पिता एक उसकी हम भारत, तू मेरा गुरहाई, ये तो गुरु अर्जुन साहब ने कहा, कबीर साहब क्या कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन बने, यही सेंट जानवी का इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड द सेम वॉज इन द बिगिनिंग विद गॉड ऑल थिंग्स वेर मेड बाई हिम एंड विदाउट हिम वॉज नॉट एनी थिंग मेड जब वो था वो कुछ वो शब्द था तो मतलब सिर्फ इतना है कि जितने महात्मा आज जिनता है कई लोगों का ये ख्याल है वो अपनी पूजा कराते थे नहीं वो सजात हक के जानने वाले थे कॉन्शियस थे उनका अनुभव कर रहे थे अनुभव करते हुए जो एहसास उन्होंने किया अनुभव किया दुनिया को बताया भाई रब परमात्मा है ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र इस वक्त एक शब्द आ रहा है आपके सामने गुरु अर्जुन साहब का जिसमें उसी परमात्मा की तारीफ की है शुरू करते हैं और कैसे उसको पा सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं उसका बाद से ध्यान होगा एक एक बार पढ़ चुके वो फरमाते हैं कि आद निरंजन एक ओंकारा आद निरंजन प्रभु निरंकारा वो आदि है माया से रहत मैटर से अभाव निरंकार है त्रिगुणती अंत से ऊपर और क्या है कहते हैं सब में वर्ते आप निराला सब में परिपूर्ण सब पर कंट्रोल कर रहा इतने साइंसदानों के निजी जिसको नहीं पा सके वो कहते हैं मरादी है समझे आदि होने से इसे बनाने वाला भी है इसमें परिपूर्ण भी है और इसके अतीत भी है इसका मताज नहीं देख आगे
वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई सब हुक्मो श्रेष्ठ रूपा
क्या कि उसकी कुछ जाति है या वर्ण है कहते नहीं वो सब वर्ण और जातों से रहते हैं और कैसे है कहते सारी सृष्टि उसके हुक्म से पैदा हो मिन नावे नाई को था नानक नावे के सब कुछ बसता है वो कंट्रोलिंग पावर उसके बिना हुक्म नहीं झूले पाता सारी कायनात उसके हुक्म में चल रही है आगे कानून बना दिए कुदरत के वो कानूनों के मुताबिक सब सिलसिला बाकायदा चल रहा है बाकायदगी से अपदाती नहीं ये बाकायदगी हमको बतलाती है कुछ चीज ऐसी है जो इसको सब सेट कर रही जी आगे
लाख चौरासी जोन सुबाई मानस को प्रभु दीवड़िया
कहते चौरासी लाल दिया जून बनाए जल थल हर एक किस्म के चार खानी ध्यान की है एक तो वो है जो पसीने से पैदा होते जमीन से उगते उखवच एक वह जो पसीने से पैदा होते हैं एक वो है जो अंडे से पैदा होते हैं एक वो है जो जिली में लिपते हुए पैदा होते हैं जैसे इंसान और हम जैसे 84 लाख किस्म की जिया जनता है इसमें से मानस जन सबसे सर्व जो तेरी पनाहारी सब में तेरी सिकदारे इस मनुष्य जीवन में ही हम उसका अनुभव करते जो आदि है सब और किसी योनि में नहीं ये फजीलत अगर दी गई है तो केवल इंसान या मनुष्य जाति को दी गई है और किसी को नहीं दी
इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा
कहते जो 84 लाख जिया जो उनकी सरदार जो उन मनुष्य जीवन में आ गए क्या अगर इसमें उन्होंने उस अपने आप को और प्रभु को नहीं पहचाना एक बार ये पौड़ी हाथ से छुड़ गई तो उसका नतीजा क्या होगा आए गए दुख पाएंगे यहां भी दुखी रहेगा फिर आने जाने भी बना रहेगा बात फरमाते हैं कि वो परमात्मा भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन किए श्री बरिया गोविंद के मिलने का ये वक्त है वो लामहदूर हस्ती जो है जिसके मुतालिक सब साइंसदान सिर नीचा कर गए वो बुद्धि के दायरे में नहीं आती मगर है जरूर उसके अनुभव करने का मौका मनुष्य जीवन अगर मनुष्य जीवन में हमने ये काम नहीं किया अवर काज चले कितना काम जन्म बर्बाद चला गया यहां भी दुखी रहे मरकर भी दुखी फिर बार बार आने जाने का दुख सिर पर कायम रहा
कीता हो तिस क्या कहिए गुरमुख नाम पदार
सब किया हुआ उसी का पसारा है। अब जो किया हुआ है उस करने वाले का क्या बयान करें बताओ। पीता होए इस क्या की है, हम बनाए हुए हैं। अब जिसने किया उसके मतलब हम क्या कहते हैं। पिता का जन्म के जाने को रात को रोई अपने सूत तो कहते हैं कि गुरुमुख नाम पदार्थ लिए है। अगर उस हकीकत को पाना है तो उसका कोई जरिया कहते गुरुमुख बनो। गुरुमुख बनकर किसी अनुभवी पुरुष आत्म तत्वदर्शी कहो जिन्होंने उसका अनुभव किया है, अगर वो आदि और निरंजन जो है अतीत है जिसके मुताल साइंस कहती है हमें कुछ पता नहीं भाई, हम ये भी नहीं साबित कर सकते ये चेतनता आई कैसे बन कैसे सकती है, बाकी तो सब कुछ किया है। अगर उसको आप जानना चाहते हो तो किसी अनुभवी पुरुष के पास जाओ, गुरुमुख बनो, उसके सन्मुख बैठो। और वो क्या कहता है, अरे भाई नाम वो अनाम है पावर, मगर इंटू बींग आए के वो नाम बने, सब खंडों ब्रह्मणों के बनाने वाली कंट्रोलिंग पावर और परिपूर्ण है। उस पदार्थ के साथ लग जाओ, उससे आपकी वो आंख खुल जाएगी कॉन्टेक्ट करने से जिससे वो हरी जगह नजर आएगी। तो जेता कीता तेता ना उसके मतलब क्या कहेगा, क्या कह सकता। हाँ ये है कि अगर गुरुमुख बन जाओ, नाम के पदार्थ की दौलत को पा जाओ तो फिर वो हरेक जा परिपूर्ण आपकी वो आंख बन जाएगी जिसे वो नजर आता।
जिस आप भुलाए सोई भूले, सो बुझे जिसे बुझाएगा।
अगर वो मालिक न चाहे कौन उसको पा सके, जिसको वो चाहे वही उसको पा सकता। वो चाहे तब ये सारा सामान क्या बनता है, कोई मिला हुआ मिला देता बस। तो ये आपको बताओ हजरत इब्राहिम साहब एक बार दरिया में किश्ती में जा रहे थे, वो भी बैठे थे, एक नन्हाट आदमी भी सैर तफरी के लिए वहां जा बैठे। तो लोग सैर के लिए जाते हैं, नकाल थे नकले करने लगे हंसी खुशी की बातें। तो ये चुपचाप बैठे थे कायदे के सब हंस रहे, एक आदमी चुपचाप बैठा हो, वो नकालों ने उनकी नकलें उतारनी शुरू कर दी। हजरत इब्राहिम साहब देखते हैं कि मुझे अंतर से वही हुई, खुदा ने कहा कि देख हजरत इब्राहिम तेरी नाराजगी मुझे मंजूर नहीं, तेरी नाराजगी मुझे मंजूर नहीं। अगर तू कहे इस बेड़ी को उल्ट दिया जाए इनको डुबो दिया जाए, चलेगा। मैंने खुदा से अर्ज की कि खुदा इन बेचारों का क्या कसूर, अगर आप दयावान हुए ये जेल और विद्या में है इनका ये पर्दा उतार दो। कहते जब पर्दा उनका उतर गया सब आके उनसे माफी मांगने लगे कि महाराज हमसे गलती हो गई। तो महात्मा दुनिया में आते हैं, लोग उनकी नाराजगी भी करते फिर भी वो बेचारे कहते हैं बेचारे तो क्या कसूर है भाई, जैसे जित द्वारे उभरे स्थिति लिया होगा, हे महाराज दया करो इन जीवों पर, जिस तरह से ये उभर सकते हैं उसी बहाने से उनको निकाल लो। वो तो हमारे हमदर्द हैं, उनकी आंखें खुली हैं, हम सबकी बंद हैं, वो हम पर दया करते, वो दया करते हम सभी से इनकी कोई गर्ज होगी, क्योंकि दुनिया में गर्जमंद सौदा है ना। ये बेगर्जी से खाए घर से तकलीफ सिर पर उठाए सुबह से शाम तक, काम मुफ्त न करे बुरा भला अलहदा कहे, फिर जो काम पर कुछ मतलब जरूर होगा, जैसी आने वैसी दुनिया नजर आती है ना।
हरख सोग का नगर किया तो उभरे जो सतगुर सरणिया।
कहते ये नगर जो जिसम तुम लिए बैठे हो ये सुख और दुख का धाम है, हरख सोग का नगर है, इससे ऊपर कौन बच आ सकता है। सो उभरे जो सतगुर सरणिया, जो किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में आएगा वो इसे उभर गया बाकी नहीं। ये स्वामी जी महाराज ने फरमाया, क्या कहते हैं, छोड़ो ये दुख सुख का धाम, क्या कहते हैं, छोड़ो ये दुख सुख का धाम, चढ़कर लगो अब सतनाम। सतनाम से जो है उसके साथ इसके ऊपर आ जाओ, ये धाम जो जिस्म है सुख और दुख का, इसके ऊपर आकर वो सत्य असल नाम जो उसके साथ लगे। तो महात्मा एक ही बात कर, मगर सुख दुख के धाम से ऊपर आकर जब तक आप जिस्म जिस्मानियत का रूप बने बैठे हो तब तक उसके साथ नहीं लग सकता। क्राइस्ट ने इसीलिए कहा कि जो लोग ये बाहरी जिंदगी को पकड़े बैठे थे वो हमेशा की जिंदगी से खाली रह जाए, वो हमेशा की जिंदगी जो पाना चाहते हैं उनके लिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं। जब पिंड से रूह ऊपर आ गई जिसमें मिट्टी का ढेर हो गया बाहरी तलका की क्या कीमत रह गई, चार दाम का छिमरो क्या कीमत है, आध आध कौड़ी थी इसकी कीमत नहीं। जो नाम के जपने भय लखी ना लाखों वाला बन जाता है उसकी कीमत बन जाती है। जो इसी जिसम जिस्मानियत में रहे दुख सुख के धाम में रहे यहां भी दुखी रहे बार बार आते जाते रहे दुख का खात्मा न हो, तो कहते हैं जो सदगुरु की शरण में आए वो सुख दुख के धाम से ऊपर आते हकीकत से वासिल हो गए। जब तक आप मनिंदों के घाट पर बैठे हैं बाहरी दुनिया में खर्चते हैं तब तक उस हकीकत से दूर, उस हकीकी सिलसिले की अलफ बे कहो ए बी सी कहो कहां से शुरू होती है, वे दी वर्ल्ड फिलासफी एंड देयर दी लिविंग स्टार्ट, जहां दुनिया के सिलसिले खत्म होते हैं ना वहां से वो शुरू होती है। इनों से ऊपर आओ अलफ बे शुरू होगी। बताओ हम जितने साधन कर रहे हैं कहां पर बैठे, इंदियों के घाट पर। जब आप किसी अनमरी पुरुष के चरणों में जाओगे कहते छोड़ो दुख सुख चलो पिंड को छोड़ो चलो ऊपर अलग है वहां से हम तक ज्योति पड़ थोड़ी चल पड़ो आगे आगे छोड़ती है नाम की दुनिया से, उनकी अलग है वहां से शुरू होती है जहां से दुनिया के सुलझे खत्म होती है। कितना ऊंचा मारे और ये काम हम कब करते थे मनुष्य जीवन में ही, ये 84 लाख ये जून की श्रद्धा जून है, ये आपको भागों से मिली या पौड़ी छुड़की फिर हाथ में आ गए ऐला जन हुआ, एक बार मनुष्य जीवन हाथों में आया हाथों से निकल गया फिर ये जन्म तो बर्बाद कर। तो गुरु अर्जुन साहब ताकीद कर रहे हैं हकीकत को पहले बयान करके, प्रभु है आदि है समझे अविनाशी है निरंजन है निरंकार है, उसको हमने पाना है जानना है जो मन बुद्धि से परे है। कैसे जानो कैसे गुरु मुख बनो नाम के साथ लगो। ये काम कब कर सकते हो कैसे, जब आपको ये मनुष्य जीवन मिला, ये मनुष्य जीवन आपके हाथों से निकल गया समझो बर्बाद करें, फिर या नसीब का मनुष्य जीवन मिले फिर आप ये काम कर सकते हो और किसी युग में आप ये काम नहीं कर सकते।
देखा गुणाते रहे निरारा तो गुरमुख शोभा पाएगा।
कहते जो सदगुरु की शरण क्या सत्स्वरूप हस्ती अनमरी पुरुष के चरणों में आ गया वो तो क्या उपदेश है, अरे भाई तू त्रय गुण आत्म कंडे में बंद है इससे ऊपर आ, तीन गुणों से न्यारा हो, जब तू ऊपर आएगा तू सच्चे मानो में गुरुमुख बन जाएगा और शोभा पा जाएगा मालिक की दरगाह में भी और दुनिया में भी। सच्चे मार्ग चलने हैं वो सुख करेगा, हाँ दुनिया भी वाह वाह करती है और प्रभु के दर पर भी वो कबूल हो जाता, मगर कब का सवाल है जब आप तीन गुणों से पार आ जाते। यही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को इशारा दिया है जहां त्रैगुण विषय वेदा का जिक्र किया है कहा भवेतु अर्जुन अर्जुन तीन गुणों से पार जाओ, इशारा दे दिया। तो सदगुरु के चरणों में आकर हम तीन गुणों से पार त्रिगुणति अवस्था को पा सकते हैं, किस के जरिए नाम के जरिए कैसे गुरुमुख होगा और कोई उपाय, और ये काम कब कर सकते हैं केवल मनुष्य जीवन में और किसी युद्ध में नहीं। एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया जन्म बर्बाद हो गया। देखो कितनी जरूरी चीज है, हम इंद्रों के भोगों रसों में सारा जीवन व्यतीत कर जाते हैं, यही हमारी दुनिया यही दीन यही ईमान यही खुदा बनी बैठे जिसकी कीमत क्या है आदि कौड़ी दीजिए, जिसम जब छूटता है हम समय जाकर देखो किसी को क्या रह जाता है।
अनेक कर्म किए बहुतेरे जो की जैसो बंधन पैरे,
फरमाते हैं कि इंसान अनेक कर्म किए बहुतेरे अनेकों कर्म बहुत हर एक इंसान करता रहा मैं नतीजा किया जो कर्म किया वो सब बंधन का बोल रहा। जब मनिंदों के घाट पर रहा सकाम कर्म किए कर्ता होने की हैसियत में करे जो जाने मैं किस करता सब लग गर्भ जो मैं करता बंधन का कारण बना ना दिनों दिन भगवान कृष्ण जी ने गीता में इसका थोड़ा जिक्र किया है। जीव को बांधने के लिए नेक और बद कर्म दोनों ही एक जैसे, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। जब तक नेह कर्म न हो इंसान, तब तक काम नहीं। नेह कर्म होना, त्रिगुण अतीत अवस्था को पाना गुरुमुख होकर होगा, नाम की कमाई से मनुष्य जीवन में।
कुरता बीज बीजे नहीं जमे, सब लाहा मूल गवाएदा।
आप देखिए, जब खेती का मौसम हो ना किसी बीज के बीजने, उसी वक्त अगर बीजो तो वो फलता है, अगर उस वक्त न बीजो तो फजूल चले जाते। कहते हैं आजकल जो बीज है ना नाम का, उसको बीजो। कलू अब कलू आयो रे, नाम बोवो बोवो आन रुत नाही नाही मत ब्रह्म भूलो भूलो। आजकल तो भाई नाम का निस्तारा, कहते किसी भ्रमों में न जाओ नाम के साथ, कुरता बीज न बीजो। और जो कर्म धर्म है तुम करो वो इंद्रों के घात के हैं, बड़े लंबे हैं, लाखों वर्ष कहते हैं जब उम्र थी। अगर किसी ने उस होकर हजारों वर्ष तब कर लिया तो हो सकता था, आज तुम क्या कर सकते हो? वो कर्म धर्म आज फी जमाना हम काबिल नहीं रहे हैं तो जरूर मन लंबे। कहते आजकल तो भाई शासक थोड़ी आयु है, निर्बल जीव है। नाम के साथ लगने का जो मजमून है ये वक्त के समय का बीज है, बाकी सब कुरते बीज है, हुजूर चले जाएंगे। नतीजा उसका क्या होगा? जो लाहा था वो भी जो आ जन्म बर्बाद चला जाएगा।
कल युग में कीर्तन पर धाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना।
अब शक न रहे कि कुरुता बीज कौन सा है, बीज आजकल का जो बीजा जा सकता वो कौन सा है। कहते कल युग में कीर्तन पर धाना, कल युग में कीर्तन पर धाना, गुरुमुख जपिए लाए जा, गुरुमुख होकर उसको जपो, पूरा ध्यान और तवज्जो उसमें लगाओ। अब कीर्तन किसको कहते हैं? आम दुनिया बाहरी गाने बजाने को, गुनावाद गाने को कीर्तन कहते हैं, मगर संतों ने इसकी कुछ और तारीफ की और बाहर के गाने बजाने का भी निर्णय किया है, समझे? रागी नादी गावे बहु कांत करने भीजे हरण आया, इसकी कीमत आ जाती है। इसके ऊपर वो नहीं भीजता, थोड़ी तैयारी है, अपरा विद्या का साधन है, मुबारक रहे। मगर वो कीर्तन कौन सा है जो कलयुग में परवान है, जिसको गुरुमुख बनकर ध्यान लगाकर सुनो, उसकी तारीफ फिर गुरु साहबों ने की है। राम नाम कीर्तन रतनवत हर साधु उपास रखी जाए, जो रमे नाम का उसमें धुनी हो रही है ना, कहते वो कीर्तन, वो हीरे और जवाहरात रत्न जैसी कीमती है, उसकी पूंजी हरि ने साधु के पास रखी। जाओ अनुभवी पुरुष के पास, साधु किसी अनुभवी पुरुष का नाम, जो मनुष्य के घाट से पुत्र जो नतीत अवस्था को पा चुका, साध की उपमा तेह गुण से दूर, जो त्रिगुण अतीत अवस्था को पा गया उसका नाम साधु, उसके पास हरि ने रखी है। किसको मिलता है? जो वचन गुर सत सत कर माने साधु का, जो उसके बच्चों को मान कर कमाए के वो सामने रख दे। फिर जगह जगह गुरबानी में इसका निर्णय किया है, साध संग हर कीर्तन गाइए, साध संग अनुभवी पुरुषों की शोभ में यह हर कीर्तन गाया जाता है। साध संगत हर कीर्त, साध संग हर कीर्त है, सिर कर्मन के कर्मा, सब कर्मों का सिर कर्म साधु की संगत में नाम का हरि का कीर्तन। किसको मिलता है? जिसे दोनों पूर्व लेखे कर लेना, जिसको मालिक आप दिया करें। फिर ये कहा अखंड कीर्तन, ये जो कीर्तन है अखंड हो रहा है 24 घंटे हर वक्त हो रहा है, हम उधर तवज्जो दे ना दे हर वक्त हो रहा है। जब वो डेवलप हो जाता है किसी साधु की कृपा से, 24 घंटे कीर्तन जारी रहता है बगैर देने पैसे के। कहते ये अखंड कीर्तन का भोजन किसको मिलता है? अखंड कीर्तन तिन भोजन चीरा कव नानक जाके सदगुरु को, जिसको पूर्ण अनुभवी पुष्प मिल गए कहते उनको ये अखंड कीर्तन का भोजन जारी रहता। आप साहब क्या कहते हैं कि शाम का वक्त जब होता है हमारा गवैया बगैर तेले पैसे के गाने को आ जाता है। हर वक्त तब भी हो रहा है, हमारे कान क्यों नहीं सुनते फैलाओ में। गुरुदास शीशान ने फरमाया, ऐ सरुनो मेरे ओ हर शरीर लाए, सुनो सत बानी, वो सत बानी जो है उसको सुनो। वो कौन सी सत बानी है? यही बाणी वजी चौ युगी सचो सज, ये बाणी चारों युगों में बजती चली आई, साउंड प्रिंसिपल चारों युगों में, आज नहीं। बाहर महात्माओं की बाणी काबिल इज्जत है, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। मगर कोई 100 साल से, कोई 500 साल से, कोई 2000 साल से, कोई 1500 साल से, ऐसे ही जो नाम या बानी है ना, चार युगों से बजती चली आई है, वो तो भाई चारों युगों में एक जैसी। बाहर महात्माओं की बानी तो थोड़े थोड़े अच्छे से, कहते कहां पर है अंतर ज्योत निरंतर बानी साचे साहब से ले लाई, वो तुम्हारे अंतर में हो रही है ज्योति से उसका निकाल। तो फरमा रहे हैं कि कान उसको सुने, गुरुमुख जपिए, गुरुमुख बनकर ध्यान लगाकर सुनो, 24 घंटे कीर्तन होगा, उसके सुनने से रूह जन्मों जन्मों की जो मनिंदों के घाट पर सोई पड़ी है जाग उठती। बाहर की आवाज से, राग रंग से मन जागता, रूह सो जाती। इस अंतर के राग से रूह जाग उठती या मन सो जाती, इतना भारी फर्क। जी आगे
आप तरे सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएदा।
जैसे अगर गुरुमुख बनकर तुम उस ध्यान लगाकर उस कीर्तन को जपोगे सुनोगे, तो आप भी तर जाओगे। और क्या फरमाते हैं, सगले कुल तारे, जितने तुम्हारे कुल कुटुंब में सब कर जाएंगे। और उसका नतीजा क्या होगा, मालिक की दरगाह में तुम इज्जत पाओगे। आगे
खंड पाताल दीप सब लोआ, सब काल वस आप प्रभ किया।
सत्य जिन्नी क्रिएशन है, खंड पाताल स्थूल सूक्ष्म कारण जिन्नी कायनात है, कि ये सारी उस मालिक ने बनाई है और काल के हवाले कर दिया, कंट्रोल नियम बना दिया, नेगेटिव पावर भाई तुम इसको अब चला। सत्या उसी की है। वैसे काल पावर क्या है और दयाल पावर क्या है, सारे महात्माओं ने दो पावरों का जिक्र किया है, कहीं नेगेटिव पॉजिटिव समझे, कहीं काल और दयाल, कहीं रहमान और शैतान, दो पावरों का जिक्र किया है। मगर दोनों ही पावरें आधार कहां से लेती है, सवाल यह। कबीर साहब ने इसका निर्णय किया, किसी ने काल और अकाल कह दिया, किसी ने उत्तरा याद कर लिया, पहले उसने सारी क्रिएशन बनाकर काल के हवाले नेगेटिव पावर के कंट्रोल में दे दी। मराधा नेगेटिव पावर कहां से आई, काल अकाल खत्म का सीना एक पर पंच बनावाना उस मालिक की बनाई। जैसे बिजली है, कहीं पर आग जला रही है, कहीं पर बर्फ जमा रही है, बिजली की जो सत्य दोनों फेज में काम कर रही है। अरे भाई ऐसे और काल और दयाल और क्या, समझे, उसका अपना काम है। जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं, ये भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं। और सब महात्मा उसको क्या करते हैं, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, ये मेरा काम, दुनिया को स्थित करने के लिए, बाकायदगी में करने के लिए। संतों का काम पॉजिटिव है, वो दुनिया के काम को सिर से को छेड़ते नहीं, इसके कानून में जरूर रहते हैं। मन उनका काम क्या है, वो सुख को मनिंदों से आजाद करके अपने आप को जानकर प्रभु से जोड़ देते, आना जाने ही दुनिया को गैर आबाद करने का उनका काम है, ये कहते हो। तो ताकते दोनों काल और अकाल दोनों ही उस मालिक की बनाई हुई है, कमांडर इन चीफ है, एक वायसराय है,
दोनों सत्य कहां से दे रहे हैं? किंग से। तो कहते हैं ये सारा सिलसिला बनाकर मैं किसी पावर के कंट्रोल में दिया है बाकायदा रखने के लिए, आखिर दुनिया की भी बहबूदी भी वर्ग है ना, सुप्रीम पुलिस है, हम कुछ ऐसा काम न करें जो कानून के खिलाफ, हम कहते सुप्रीम पुलिस नहीं है, कुछ करेंगे तब आएंगे ना वो। तो संत महात्मा इन कर्मों के नए कर्म हो जाते, बाहरी सिलसिला हर एक आपको अपना काम, अवतार अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे दिल में जैसा, संत अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी, उनका अपना काम है, उनका अपना काम है वो पसे पुष्ट आधार है की ताकत देने वाली ताकत, ये कह लो दे आगे।
निचल एक आप अविनाशी, सो निचल ज्योति से ध्यानदा,
कहते वो मालिक एक अटल और लाफानी है, कभी न बदलने वाला है, सत्य है, जो उसके ध्याने वाले हैं वो भी अटल और लाफानी हो जाते हैं। हाफिज साहब ने एक जगह बड़ा अच्छा बयान किया है, खाना फरामोशित शुदा आवाज भी निवस्त शुदा, खाना फरामोशित शुदा के दर बदरी किस्मत में लिखी गई रू भटक रही है ना जन्मों जन्मों, और जो असल घर था रू का वो हमें भूल गया, आ गंदा पीरे काबली बस सैर कर दग दगा, उस काबल के गंदे पीर ने बड़ा जादू हम पर डाल दिया, घर को भूल गए, दर बदरी हमारी किस्मत में लिखी है, नेगेटिव पावर का जिक्र कर रहे हैं, सब महात्माओं ने जिक्र किया है, इस एहसास पर आते हैं। तो ये कह दो कि दुनिया का खुदा कोई और है और पसे पुष्ट आधार देने वाली ताकत, संत महात्मा उसके पुजारी है, वो भी उसी से सत्य लेकर कंट्रोलिंग का काम कर रहा है, अच्छा है। आज शहर में गड़बड़ हो जाए तो मिल्टी के कंट्रोल के हवाले कर देते हैं, नहीं शायद दो चार दिन में गोलियां बंदूक के चलाकर बाकायदा कर जाओ भाई सिविल के हवाले कर दो, बात नहीं, दोनों आपको अपनी जगह काबले करना, उनका अपना मिशन है, उनका अपना मिशन। कहते हो तो नेचर को जो ध्याने वाले हैं, आप देखिए अवतारों के पुजारी ठंडे दिल से विचारने वाली बात, जब तक वो अवतार धारण करते रहेंगे वो भी आते जाते रहेंगे, जब वो लाए होंगे वो भी लाए हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, असूल की बात है। जो नेचुरल स्थान के साथ करने बाहर से सिर से हाथ उठाकर डायरेक्ट फैसला करने वाले हैं वो हमेशा के लिए जल्दी फैसला होते, तो दोनों ही आपको अपने अगला काबिले कदर है, उनका अपना काम है, उनका अपना काम है, दोनों की इज्जत आपको अपनी जगह, मगर काम उसी एक ही मालिक से सत्या ले रहे हैं, दो नहीं। जैसे मैंने मिसाल दी थी, बिल्ली आग भी जला रही है और बर्फ भी जमा रही है, ज्यादा मुतजाद चीजें मालूम हो रही हैं, मगर है एक ही चीज पीछे आधार देने वाली एक ही चीज।
हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा,
कहते जो हरि का सेवक हो हरि का रूप बन जाए, कहते जिस्म का भेद मत देखो, जिस्म तो जरूर रखता है मगर जिस्म में रहती हो अपने मालिक से अभेद है, पिता पूते के रंग मिले, पिता और पुत्र एक ही रंग ले लेता, पिता पुत्र रंग की निशान, ये गुरु अर्जुन साहब फरमा रहे हैं और यही क्राइस्ट कह रहा है, आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक। ये जिस जिस्म में जो आत्मा मन इंद्र से आजाद करती उसमें लय होगी, उसका माउथ पीस बन गई ना, जिसम को वैसे ही मल मूत्र का थैला तो वैसे ही दिए देते, मगर भाई जिसम के भेद ना देखो, वो उस मालिक के इजहार की जगह उससे और रहे, पोल जैसे जिस पर इजहार हो, फिक्स पावर हाउस तो नहीं मगर पावर हाउस के इजहार की जगह तो है ना, उस स्विच को स्विच ना जानो, तो सबके अंतर वो है, ये ना कहो किसी के अंतर नहीं है, सबके अंतर, मगर सबो कट मेरे साइया सुनी से कोए, बलिहारी तिस घट के जहां घट प्रगट हो, बात अगर उसको उस हकीकत को हमने जानना है जो लाभयान है, जहां साइंस वाले सिर नीचा करके बैठे अभी तक, अगर उसको जानना है तो किसी अनभवी पुरुषों के चरणों में जाओ।
गुरु मुख बनो। और हंसने का हुक्म पिया बिन सतगुरु चेतिया न जा। उस माले का एक कानून है, फंडामेंटल असूल बन गया कि जब तक कोई सत्स्वरूप हस्ती नहीं मिलेगी मैं नहीं मिल सकती, वो जाना नहीं गया। इससे खोल करो वो क्या ध्यान करें। क्राइस्ट को लोगों ने कहा क्या अच्छा हो कि तुम हमेशा अपने पिता का जिक्र करते हो, अगर कहीं तुम हमको अपने पिता के दर्शन करा देते। तो कहते ही ग्रू इंडिग्नेंट ओवर इट, थोड़े जोश में आए, कहते अफसोस मैं इतनी मुद्दत आपके दरमियान रहा, आप ये न जान सके कि मुझ में मेरा पिता बैठकर काम कर रहा, जो कुछ मैंने काम किया उस पिता के आधार पर किए, आधार पर किए। आई इन माई फादर अनुभव एकता महसूस होने लगती, मगर फिर भी एकता महसूस करते हुए भी दम नहीं मारते, निम्रता उनका श्रृंगार रहा। वो ये नहीं कहता आई एम गॉड, वो अंतर में एहसास होने लगता है। मैवियत में आकर कभी कोई बात ऐसी वैसी हो जाए तो अलग बात रही, मत्री का बयान उनका हमेशा थर्ड पर्सन में रहा। कभी तब आए तो क्या कहते हैं, कहे कभी हम दूर घर के भेदी लाए हुक्म हजूरी। कबीर साहब कहते हैं हम दूर घर के भेद के जानने वाले हैं, हम उस मालिक के हुक्म को दुनिया को सुनाने आए हैं। इशारा तो दे दिया ना, जब मालिक वादव ला शरीक है, कोई सानी नहीं कोई शरीक नहीं, उसका हुक्म कौन लगाएगा? यही कहोगे तो उसी की पावर किसी पोल पर बैठी उसका हुक्म सुना रही है, और क्या कहूंगे। जैसे मैं आए खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान में लाला, ये गुरु नानक साहब कह रहे हैं। इसका और क्या मतलब है, संतों की कहानी उनकी अपनी जबानी सुनो तब रंग और नशा आ जाता है। अगर वो ना बतलाए तो हमें क्या मालूम है कौन थे। जब उनके तुम गुरुमुख बनते हो ना, तुम भी उस हकीकत को पाते, उसका तजर्बा होने लगता। तो कहते हैं मानस देह का भेद मत देखो भाई, उस पोल में उसी का इजहार हो रहा। नानक दास बुलाया बोला जी,
ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सलल समायदा।
अब महात्मा कुछ यत्न करते हैं समझाने का, हर पहलू से लिहाज से नहीं, थोड़ी समझ के लिए। कैसे जैसे दरिया में दरिया की लहर पैदा हो जाती है, लहर एक अलहदा चीज मालूम होती है, मगर है दरिया ही, दरिया ही से निकलती है, दरिया ही में लहर हो जाती है। ऐसे अनुभवी पुरुष उसी का इजहार है, उसी में लाया हो जाता है। कई तरीकों से महात्माओं ने ऋषि मुनियों ने उसकी एकता का बयान तो किया है, सबने किसी न किसी तरह किसी न किसी तरह, मगर वो चीज है ला बयान। वो एकता कैसे महसूस होते वो वही जाने जो उसमें जाग उठे, समझे। कई उन्होंने तो ऐसा बयान किया ऋषियों ने, जैसे लोहे का गोला आग में पड़कर आग का रूप हो जाता है, ऐसे ही आत्मा उसमें लेकर उसका रंग ले लेती है। मगर उसमें बुद्धि की तमीजी से आ जाते, वो लोहा है भाई लोहा, उसका रंग लेता। अरे भाई ये सिर्फ एकता की एक मिसाल दिया। किसी ने कहा जैसे जल में जल आए खटाना, त्यों संग ज्योति ज्योत समा। जैसे जल में जल आकर मिलकर एक रूप हो जाता है, ऐसे हमारी ज्योति उस महान ज्योति में मिलकर उसका रूप हो जाता। ये लफ्जी बयान है समझाने बुझाने के लिए। वो एकता का क्या एहसास होता है वो कोई अनुभव ही जाने। लफ्जों की अड़चन में न रहो, समझे। दसम गुरु गांव में ध्यान किया, जैसे आग जल रही है उसकी चिंगारियों में ही है, चिंगारियां अलहदा होकर फिर उसी में समा जाती है, जैसे मिट्टी जमीन से उठकर फिर मिट्टी में समा जाती है, ऐसी हमारी आत्मा उसमें समा जाती है। मिसालें देकर एकता का एक किस्म का बयान है, तरीका बयान है भाई। वंटिटी महसूस करने इंसान की अपनी हस्ती महबूद होती है, उसमें जाग उठता है। अरे भाई वो क्या रंग आता है, इसे क्या जानना है। वेदों में और हर एक महात्मा ने कई तरीकों से ध्यान किया, उसमें एक महानंद है, निजानंद है, एक सरूर है, एक नशा है। उसके ऊपर किससे ध्यान किया माफ करना, जैसे कामी काम लुभा हुआ है तो हर जन हर जस को बताओ, काम का मुकाबला किया और नाम का मुकाबला किया। मगर हमें और कोई तजुर्बा नहीं, दुनिया का तजुर्बा है ना, इसी मिसाल से समझाना चाहते हैं ये कहां और वो कहां, कि کی نسبت خاکرہ بال میں پاک مر سمجھانے کا یتن. جب مہاتما ملتا آپ کو پنچو پہلے اوپر لانے کا یتن تک جوتی پر گٹ لو کہ تم تک جوتی کہاں مجھے ایک مہاتما ایسے ملے کہنے ارے بھائی سورج بھی انتر دیکھنا تو باہر سورج نہیں چڑھا پڑو باہر ہی دیکھ لو. لوگ کہتے کھنڈ برہمن اندر میں بس رہے ارے بھائی آنکھوں میں مل جائے خون ہے لوا اور کیا بھائی ایسے باتوں ایسے مہاتما کو تو چھوڑو. تو میرے کہ جوان بھائی پوچھے وہ آپ کو تجربہ دیں گے پہلا فرسٹ ہے جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو پھر شک کی گنجائش کہاں رہے گی دن دن کرو اور بڑھے.
ایک جاچک منگ دان دوار جا پرب بھاو تا کرپا دھارے.
کہتے کہ ہم بچے ہیں ہے مالک آپ کے دوارے
باپ سا بنا سے ہر سوتے ملائی درشن ہر دے
سب باتوں کرنا درشن دیکھنا درشن کرنا دو چیزیں ایک یہ ہے دل دل کو لا بننا دوسرے کا ست بننا سچن بنا یہ ہے درشن کا پیسہ. کہتے آئے جاتی ونڈو جاتی شوق جس رنگ میں آتما رنگ ہوگی وہی رنگ آنکھوں سے ڈر آئے اور درد کے بننے سواؤ سے نئے بھی جو اندر میں بسی حالت ہے وہی بات نکلی اسے چاہ جو بنے گی جو ہوا بڑوں کے ساتھ لگ کر آئے گی وہ ٹھنڈی ہو کر آئے گی جو ہوا آپ کے ساتھ لگ کر آئے گی وہ گرم جس طرح بڑوں کا رنگ ہے آنکھوں آنکھوں سے دیکھ رہے کہ وہ روح کا جو ہے جسے کو ملا دیکھیے بیٹے سے ہاری کا رنگ آتا اس سے سارے پاپوں کا ناش ہوتا درشن بیٹے سے پاپ سب ناش ہر سن دینا بڑی سے دیکھ دیکھ ملا دیتا کہتے کہ میرا گرو پرمیشر سکھوں کی دینے والی اس کے اندر گرو پرماتما پرگٹ ہو از گاڈ ان مین اور مین ان گاڈ تو پھر درشن بیٹے سے سر پاپوں کرنا چاہیے بیٹا میں نے کہا ہو رہا ہے ملنا ہو رہا ہے جب کبھی کھیتی نہ ملو میں نے ابھی آگے کیا تھا کسی مہاتما کی تعلیم کوئی بھی جو دیتا ہے ون تھرڈ بائی ورڈ آف ماؤتھ ٹو تھرڈ بائی کرتی زبانی ایک بٹا تین روپئے میں سے پانچ آنے گیارہ آنے اکٹھے ہونے یہ گفت سبق بغیر سچار کرنے سے سبق دیتا 1955 کی بات ہے میں جرمنی میں گیا تھا فرسٹ روپئے اور تو بس وہ درشن سے گھر پر ملا اور نہ پہلا آدمی تھا وہ ڈپارٹمنٹ ٹینٹر جو وہاں میں نے ٹاپ لی انٹر بیٹھے رکھا انگریزی میں ٹال ملتا تھا ایک جرمن انٹرپریٹ کرتا تھا تھوڑی دیر کے لیے تو وہ سنتے رہے پھر کہنے لگے انٹرپریٹر کو تم غلط سمجھاتے ہو اس آنکھوں سے چیز سنی ہے تو آئے یا تو زندگی لائی ابھی باڈی آئے پھر دن آئی بھی سنگل دن ہو باڈی سب کھلا سب کام کرتے جیسے مجھے نہیں سیکھنا سب وہ دیکھا دیکھا اور پھر کہہ رہی ہوں دیکھا نہیں ڈٹ میں چھپائی انتر گتی جیسے دینے والا ہماری ٹیکس ہوگا اس میں نہ ہونے لگے جیسے میں نے سب بھول گئے تو سب پاپا کا نام چلے جیسے میرا گرو آپ شکرداری ہے شکر کا شکر ہے کیا کرنا ہے یہاں چلے جاؤ کرے روز کرے اس میں نشہ ہوتا ہے نام خوانی نام کا چڑی نام جو چڑھنے جاتے جو بھی سکتے ہو جن
उनकी आंखें खुलती हैं, उनकी कमी है। इसे गुंडान से हमला की अस्थि को खुराइया कहा, अगर उसी साल को शुभ कहा गया। बोले नहीं, खाली बेटा नहीं खाली देखे ही अच्छा मंत्री को शुभ कहा, समझ समय की खल छोड़ा गुरुअर्जुन साहब को सबसे सब ऊपर लगा जिनकी आंखें खुलती होते थे गुरु गौर सोनाथ, जिनकी आंखें नहीं खुली उनके लिए वो खुलाइए हो गया। लोग उनके अपने भ्रष्टाचार में गुरु नानक साहब को संख्या में दाखिल नहीं होने दिए थे, ये अपने साथ होता तो बड़े प्यार से सुना दिए।
मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई ब्रह्म का नाम दृढ़ावे अंते होए सखाई।
पहला काम क्या करता है जो गम से परे गम के ठहराव में है ना, मेरा के मैंने ठहराव में जाने वाला जो पाल बम है उस जो परमात्मा है नाम वो बंधार है उससे जो बुलाता है प्रतीक बुलाता है कॉन्टेक्ट देता है ध्यान वाला बना देता है। और क्या करता है
बातें हुए
और जब आपका अंशम आता है आदर आओ तो चल नहीं मिलते बीते जी पिंड को छोड़ को आने जाए या मर जाए समय जब सारी दुनिया जवाब दे वो कहता है आदमी चल रहे। इसलिए सारे महापुरुष ने वो कहता है देखो जिसको कोई अंदर ही पुरुष नाम देता है वो उसको तो सब उसको छोड़ता नहीं जब तक उसको परमात्मा से मिलाना नहीं तब उसकी गोद में नहीं डालना। ब्रह्मा जी आप बैठना लोगों ने मुझे पास किया था मैंने कहा आई डी आई वॉज लव यू, मैंने कहा कैन नेवर लीव यू नॉट फॉर थिंग यू कैन बी एन लव यू वन इफ यू आर नॉट लव अस वे द क्वेश्चन ऑफ विकम इज बैक खेरा जी गुरु जब मिल जाए वो तुम्हें छोड़ता नहीं खास तुम छोड़ जाओ वो तुम्हें देख कर जाए छोड़ेगा नंबर है तो जरूर और अंत समय आकर सामने करो। दुनिया के बहुत लोग सुख में हाँ बहुत बैठ रहते उनके चेहरे विपत्त करी सभी संसार कौन नाम से जब उनकी ख्वाहिशात सूचना पूरी होगी तुम कौन हम कौन जब बिका बन जाए तो कोई बात कभी नहीं बनता। बड़े सदाचारी आदमी जो वो गिरता है कुछ करने से कहते हे मानस इसकी शांति तो जब सब दिनों जवाब दे जाए हर रात को तो ध्यान नहीं होता और चाहे तो वापस आ जाएंगे। हाथ जाने वाला कौन है ज्ञान सज्जन या संतोष तो उन सज्जन संत पति आके जीने न थे उम्र से जीते भी छोड़ जाती हूँ उम्र मरकर भी नहीं छोड़ एक और जन्म मन पे गए सार जना की कमी पड़े उनका जो हाथ है ना प्रोटेक्शन का हर प्रसार तो कहते हैं अंत करी सहाय जब सब दुनिया जवाब दे जाएगी वो जवाब नहीं देता चलो बन जाता हूँ आप भी खुलकर जाओ बड़ा खड़ा होता उस प्रभु के साथ जोड़ भी कौन सकता है ये कहना पड़ेगा जिसके ऊपर प्रभु कर सकता है वही जोड़ेंगे क्या तो वो अच्छा नहीं करेगा अच्छा नहीं सामने आता बड़ी मुश्किल हो जो कोई मुश्किल है मिले कोई कोई न दे लागू है तो श्रीमान सात भी सज सब दिनों छोड़ जाए सजे सब वास्ता चुके सब उसका चिताबे बात भी न दे न सकती है बड़ी मुश्किलात में वो इस प्रोटेक्शन का हाथ एक्सटेंड करता है किनको जो कि चरणों में आए तो बड़े प्यार से समझा रहे अंत है
ब्राह्म नाम दृढ़ाए अंते होए सखाए।
سرل آئے درکار تو پڑے نام سب خاص دھرم کا ہے کہ کام کی پڑے دکھ ڈوبا کاٹ کری ہے ہم انہیں تو جاتے ڈوب رہے وے اب کرتا اور دھرم راج کی شکاری ختم ہو جاتی اگر وہ کچھ سکتا ہے اس کی صلاح آپ دے دیتا ہے دھرم راج کے نہیں ملتا ایک لڑکا ہو کوئی قصور کر رہے اس کا پتا پولیس کے حوالے سے نہیں کرتا کہ کرتا آپ دو پہلے لگا لے گا مگر پولیس کے حوالے نہیں کرے گا تو اندر گوشت کوئی تو کرتا تو آپ اس کو فکر کرو ڈر لا کے نہیں دیں گے اور ہمارے لوگ اٹھا سکتے ہیں اگر کوئی مقدمہ بن جائے تو اس کی اپیل کون کرتا ہے پتا اندر گوشت کی نہیں کی بڑی بھاری تو ویسے فیزیبل ہے اس کو ہی نہیں مگر وہ لوگ بھی جو چیک کرتے ہیں ان کی بھی سنبھال کر میرے چاچے کی لڑکی تھی سالوں کی بات ان کی ستائش کی بات وہ بیمار ہو گئے بہت سا نہ ہونا ہے میں لاہور میں تھا چٹھی سے لکھائی تھے چاچا نے میرے چٹھی لکھی تو مر رہے تو فور نہ آیا اس کا پیار تھا پولیس کے ساتھ میں رات کرا گاڑی پر سوار ہوا دوسرے دن کو دو بجے پہنچا گاؤں میں اس رات کو وہ لڑکی کیا کی ہے میرے ہوٹل کے پاپا جی آئے ایک بوڑھا آدمی کے ساتھ انہوں نے گاڑی دیے تو پاپا چلے گا کہہ رہے ہیں بڑا بڑا پاپا جی جا رہے ہیں کہاں تک وہ جا رہے ہیں یہ ختم ہوا میں دن کو پہنچا کبھی رات آپ آج سے آپ چلے گئے ہیں جانا کبھی آپ کے ساتھ بوڑھا آدمی آئے پہچان کیا کہتے ہو شادی سے بعد راضی ہو گئے ہمارے لوگ رام کی لیے ہیں وہ بھی آئے میں تو اس بوڑھے کو دیکھو تو پہچان لوں گی کہتے ہاں دونوں سے آئے گئی اندر بڑی بھاری پروٹیکشن ہے ہم بڑی کوشش میرے اس کے جو رشتے دار ہیں نا اس کے پیار ہیں ان کی بھی سنبھالو چیز اور تو ہم تو ہوئے ہوگی کہ نہیں اس کے سوچتے ہیں ان کی بھی سنبھالو بڑی بھاری برکت ہے گرو کا مندر اٹ از اے گریٹ بلیسنگ ٹو ہیو اے ڈریم مارک
پر برہم کا نام دڑھائے
اور اب بھی گمراہ جانے والے آدمی کے آخر پر پہنچا دیتا سر سر جگہ تین سے دوسرے بڑی اوپر میں چیز ان کے لیے جائے موٹر روڈ کی تو وہاں پر سنا جو پوچھا تھا ایسے ایسے پیار کرنے میں کہ گاٹا تو نہیں ہے جب مرتے بھی ساتھ رہے مر کر بھی ساتھ رہے یہاں بھی آتا ہو کے سنبھال کرے اگر اس کو بھول جانا کسی بن بیٹھے
سکھائی سگل دکھ کا ڈیرا بھنا سنت دھوڑ مکھ لائی
خوش ہو کے ملے سے سارے دکھوں کا ناچ ہے سب کو پائی لگ ہو جاتے ایسے پوچھو کی گاؤں کی دور جانا آ کر گرو شاہ دوستوں کی جو تاریخ ریلو شاہ تو دوستوں پوچھے وہ گئے وہ کچھ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان کے تو سب اوپر گٹ ہوتے ہر ہر دن دو ایک ہیں دل وچار کچھ نہ ہے سر سے ٹکنا سوال آتے ہیں ہر کا سیو تاری گیا جی کھیل نہ جانو مانس گیا وہ سب لکھا ہے اس میں پر بیٹھا تھا سمجھو ہم بھی پر بیٹھا تھے ابھی گورنر صاحب نے سنا تھا وہ گورا سو میری آتما اس میں سما رہے گا وہ مجھ میں ہے وہ مجھ میں ہے میں اس میں وہ تو ایک روپ ہو
पतित पुनीत किए किन भीतर अज्ञान अंधेर वन्याई
ऐसे कुछ के मिलने से हमारे सब पाप करना है कितनी देर न छोड़ के मोटे बंधन जगत के गुरुपति के साथ तीनों बंधन चित के कटे नाम पता होता है بعد ریڈیشن سے دس ان کے پیٹوں سے پاپوں کا ناش ہوتا ہے جو کہ جڑنے سے थोड़ी सी किनारी लगा लो, जन्मों जन्मों के उम्र पापों के ढेर मजे ढेर लगे हों, साधु से ज्योति की किनारी लगा दो, सब बस हो
करण चरण समरथ स्वामी नानक तिस शरण आई।
वो कर्म कारण है, साहब कहते हैं किसान के दरबार में सन काल कौन होते हैं। मौलाना नूर साहब सुनाते हैं कि आसमान से चला हुआ तीर चलाया, अगर उसके तन के चार रस्ते से वापस कर दे तो कर सकते हैं। तो पूछने वाला पूछता है क्यों प्रभु के स्थानीय हो जाते हैं, बराबरी करते हैं, कहते नहीं वो कुछ मांगते नहीं, अगर कोई बात उनसे निकल जाए तो परमात्मा उसको कबूल कर लेते हैं। बात बड़ी बड़ी मुसीबतें चूड़ियों के कांटे बन जाते हैं, सिर्फ का जीवन रोज देखो क्या कुछ देखो।
बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक शब्द लवलाई।
सब बंद को तोड़ देता है, उसके चरणों में दिल लगा दो, सब बंद को टूटे बंधन दास के हवा साधु संग, सब बंद टूट जाए साधु का संग मिल जाए, साधु भावना जिसके वो बंद कर मैंने गौर में वर्ड लेट कर सारे बंधन टूट जाए, अगर साधु का संग
आंधन कूप दिखियात काढ़ियो साच शब्द बन आई।
ये मेरा कुआ है पंखे बंद करो, जो जहर है इन्हें भी जहर से भरा पड़ा, कैसे अन्न कूप से दिखा किसका ले समुद्र के साथ होते थे खैसे सदगुरु भगवान दुर्गा काट गई है एक अंधेरे खून से खैसे रूप में ये सब सब रखा है, हम अपने आप नहीं जा सकते। उसका कारण कि हमारे यहाँ सामान्य भागवत जी से मुझे करूँ मिल रही है साधन सबका पहले